الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولایا صلی وسلم دائمان ابدا اللہ حبیب کمن زانت دل اسرو وزر سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاید باری تعالیٰ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں سے پہلے ہوں. متصل جو آیا کریمہ ہے اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا کہ آپ ارشاد فرما دیں قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ اللہ کریم نے آپ کو سیدھا راستہ عطا فرمایا ہے، ایک مستحکم دین ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی طریقہ رہا ہے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. اسی میں پھر مزید جب ارشاد فرمایا گیا کہ زندگی کی ابتدا و انتہا ماننے سے انکار تک کی حیثیتیں سب اللہ کے لیے ہیں، تو پھر فرمایا لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. حضرت سامعین کرام، قرآن و حدیث سے جب صفات باری تعالیٰ سے متعلق جہاں تک ہماری سمجھ ہے اور جہاں تک اللہ کریم کو منظور ہے کہ ہمیں ان حقائق سے آگاہی نصیب ہوئی ہے، تو یقین مانیں جب صفات باری تعالیٰ کو پڑھتے ہیں احساس ہوتا ہے، محسوس کیا جاتا ہے، تو سمجھ آتی ہے واقعی اللہ کریم کی ذات ایسی ہی ہو، ہر ایک کی ہر لحظے ہر احتیاج پوری فرمانے والی ذات. خود کوئی اتنے اپنے قریب نہیں جتنا قرب اللہ رب العالمین کا ہے. ٹوٹتی سانسوں میں متعلقین کا دکھ اپنی جگہ، قریب آنا اپنی جگہ، جانے والے کا ایک بچھوڑے کی کیفیت اور موت کی تلخی کی حقیقت اپنی جگہ، لیکن ایسی مقام اور ایسے موقع پر بھی رب کائنات کا اتنا قریب ہونا کہ وہاں موجود فریقین جو ہیں وہ آپس میں اتنے قریب نہیں. تو سبحان اللہ، اللہ کریم کا احسان ہے، اس نے یہ کرم اور احسان فرمایا، ان حقائق تک آگاہی نصیب فرمائی. دنیاوی علوم، انسانی ذہنی استعداد، اس کی رسائی ممکن ہے، لیکن جب بات دائر دنیا سے نکلتی ہے، خلق سے ہوتی ہوئی عرشوں کی وسعتوں میں چلی جاتی ہے، اور وہ حصے جہاں تک انسانی حسات کی رسائی نہیں ہے، وہاں کی شناسائی اللہ کریم نے انبیاء اور رسول کو سبب فرمایا اور ہمیں عطا فرمائی. انسانی ذہن اور اس ذہن پر جتنی بھی آج تک محنت کرتے ہوئے علوم سیکھ سکا یا علم کے معنوں کو جان سکا، اس پر ہماری جدت ہی یہ کہتی ہے کہ یہ 10% سے کم ہے. اب دنیا کے حصوں کو اور دنیا کی جدت کو تاریخ انسانی کے ساتھ دیکھا جائے تو ملتا ہے کہ بارہا انسان نے مادی ترقی کی ہے، اور اس مادی ترقی میں انداز اپنا اپنا رہا ہے، لیکن اپنے اپنے دور میں ایک جدت پیدا ہوئی ہے اور پھر واپس مرور زمانہ نے اسے لپیٹ دیا. اپنے حالات، اپنے خیالات، اپنے تجاوزات، بے شمار پہلو ہیں، لیکن یہ ہوتا آیا ہے. اور آج پھر ایک دفعہ دنیا ایک جدت کی جو زندگی ہے اسے بسر کر رہی ہے، اور لا محالہ اس جدت کو دیکھتی ہوئے انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ شاید اس زمین و آسمان کی وسعتوں سے وہ نکل کر جا کر اپنا اختیار استعمال کرے. لیکن اللہ جل شانہ نے جس کو جتنی استطاعت اور جہاں تک کی फुर्सत दी है वहाँ तक की रसाई है। और उलूम जब उलूम दीनिया के साथ मुंसलिक होते हैं और दीनी पहलू का खफी हिस्सा नसीब हो तो फिर जो उकदा खुलता है, जो हकायक नसीब होते हैं वो बहुत वसी। बाज़े ऐसी कैफियत होती है कि उसके इजहार के लिए कोई लफ्ज़ नहीं मिल रहा होता कि कौन से अल्फाज का चुनाव करूं तो उस कैफियत का इजहार मुमकिन हो। चूँकि वो कैफियत एक हाल की सूरत में तो होती है लेकिन उसे किसी लफ्ज़ की कैद में कैद करना मुश्किल हो जाता। और अल्लाह करीम की ज़ात वो ज़ात है जिसका कोई शरीक नहीं, कोई सानी नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इंतहाई इख्तिसार से और इंतहाई जामे, कहीं किसी हिस्से में कोई मामूली सी गुंजाइश नहीं बचती कि कहीं कोई नुक्ता उठा सके, ऐसा नहीं, ऐसा होता तो बात समझ आती। फिर जब बात शिर्क की आएगी तो बेशक रास्तों में शैतान घात लगाए बैठा है। जब से उसने शीतनत की राह अख्तियार की, जब से वो मरदूद ठहरा, तब से उसकी कोशिश है कि उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने झूठी कस्में खाई और उन्हें वरगलाया। इसी तरह दारे दुनिया में वो इंसान के जो रास्ता, जो सिरात मुस्तकीम है, उस पर घात लगाए बैठा है। और ये बुनियाद है कि ला शरीक अल्लाह, कोई उसका शरीक नहीं। तो बड़ी बारीकियां हैं और बड़ी नफासत से कुरान व हदीस हमें इस राह की तालीम अर्शाद फरमाते हैं। इब्तदा ला इलाहा से, कोई है नहीं, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह। अब ये ऐसी बुनियाद है मोज़ज़ सामेने कराम कि ये बुनियाद नसीब हो और जिस दर्जे की नसीब हो उतना मिजाज से लेकर अमल तक ज़िंदगी बदल जाती है। हम आपस में नशिस्त में बैठे हैं, गुफ्तगू है, समात है, रूबरू हैं। आज हमारे साथ ही जो यूरोप का निचली साइड है, उस तरफ के जो साथी हैं, उन ममालिक के साथी, वो भी हमारे साथ शरीक हैं। अल्लाह उनके यह हमारी शिरकत कबूल फरमाए। तो ये रूबरू होना एक हकीकत है लेकिन इसमें उन हदूदो कयूद का बयान करना और उन पहलुओं का जानना जो अल्लाह जल्ला शाहरुहु ने पसंद फरमाए हैं वो मुकद्दम। इस गुफ्तगू में या इस दस्तरस में एक नज़ाकत पैदा हो रही है कि इस समा व बसर में कहीं किसी की ज़ात का दखल तो नहीं। तो इन्हीं पहलुओं को आप अमूमी ज़िंदगी पर ले जाएं, पसंदो नापसंद पर ले जाएं, हर जगह जहां आप बागौर जायज़ा लेंगे तो जहां तजावुज है वहां एहसास होगा कि ये पसंद जाती है, ये जाते बारी ताला के लिए नहीं है। तो जब बात इब्तदा पर पहुंचेगी, कोई है नहीं सिर्फ अल्लाह, तो फिर चाहे महाफिल हो, चाहे इनफरादी हैसियत हो, चाहे कारोबारी मामलात हों, चाहे मुआशरती मामलात या मसाइल, हर लम्हे हर लहजे इंसान ये देखेगा कि मेरे अल्लाह को क्या पसंद। चूंकि बासियत इंसान से जो उसे हकीकी इंसानियत का मकाम नसीब हो रहा है वो या युन्नास से या युल्लज़ीन आमनु के मकाम पर पहुंचने में नसीब हो रहा है। और वहदनियत बारी ताला वो बुनियाद है जो मुआशरों की तामीर करती है। इसमें जहां जितनी कमी बेशी होगी उतना मुआशरा जो है इस्तेहकाम तक नहीं पहुंच सकेगा, मुतजलजल रहेगा। जितना मुआशरे में तजलजल रहेगा उतनी जिंदगी जो है वो मुश्किल होगी, आसान नहीं होगी। अपने गिरदो पेश के हालात को जायजा लें, देखें, अपने रोजमर्रा के मामूलात को देख लें, अपने आप को जो पेश आते हैं सवाल या मामूलात मसाइल उन्हें देखें। महाल हो गया है कि किसी भी मामले में जो सही तरीका है ये समझा जाए कि इससे उसका हल हम निकाल लेंगे। क्यों? इसलिए कि हर कोई अपने जोरे बाजू पर लगा हुआ है और ये बात और ये बुनियाद ला शरीक ला यहां पर जो है वो कमजोरी पैदा हो रही है। मानना एक बात है, उस मानने में कि जानने की रसाई हो, किसी बारे में इल्म रखना एक बात है, उस इल्म के साथ अमल न हो तो वो मानने के मानों में दाखिल नहीं होगा। मजीद सवाल पैदा हो जाएगा कि जानते हुए तुमने ये ज्यादती की। तो बिलअमूम जब हम इसका इजहार करते हैं इकरार से लेकर इबादत तक, तो फिर शहादत आमाल की क्यों नहीं हमारे साथ मुंसलिक होती? तो समझ आती है कि इस मानने में कमजोरी है और ये कमजोरी जो है ये हमारी जो ये जो अंदाज है कि मानते हुए न मानने जैसे जो अमल कर रहे हैं ये वो सबक। तो बुनियादी हिस्सा जो है जो इंसान को हकीकी आज़ादी तक पहुंचाता है वो तौहीद है, वहदानियत बारी ताला का मानना है। अब इस मानने तक रसाई इस्तदाद वदियत की गई, अता फरमाई गई पैदाशी तौर पर, लेकिन रसाई इन हदूद से बाहर इंसानी अकल की नहीं है। अंबिया रसूल का मबूस फरमान ये वो एहसान है कि जो इन हकायक तक पहुंचाता है। अब जब इस मानने की बात आएगी तो ऐसा मानना होगा जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मानने का इरशाद फरमाया। तो जब इस बुनियाद तक पहुंचेंगे तो समझ आएगी कि कैसा खूबसूरत मुआशरा तश्कील पाया जिन्हें मानने की हकीकत नसीब हुई। मुख्तसर सी आबादी और मालूम दुनिया के तीन हिस्सों तक वो निजाम नाफिज होता चला गया। ये वो हकीकत है जिसे दुनिया जानती भी है, दुनिया मानती भी है। और ये अलग बात है कि आज हमारा मानना शर्मिंदा शर्मिंदा सा है। इसलिए कि इब्तिदा जहां माना गया वहां इख्तियार किया गया, हमारा मानना जो है वो शर्मिंदा शर्मिंदा क्यों है? हमारे मानने में कोई मानने जैसी कैफियत नहीं है। वो मानना इस दर्जे का नहीं है कि वो अमली जिंदगी तक पहुंचाए। दुनिया के ममालिक और उनके निजाम, हमारे वो दोस्त वो भाई जो बैरून ममालिक जाते हैं किस लिए जाते हैं? अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। सैर व तफरी तो एक अमूमी हिस्सा है, या जो वहां मुस्तकिल जा रहे हैं, जो वहां कारोबार के लिए जा रहे हैं, जो वहां नौकरी के लिए जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि मौसम का फर्क है तो जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं کے ذریعے معاش بہتر ملے، ضروریات زندگی جو ہیں وہ آسانی سے پوریاں ہوں، اہل و عیال کو جو ہے سہولت مہیا کی جا سکے۔ اور آپ یقین مانیں، جتنا میں نے سفر کیا اور جتنا اپنے لوگوں تک مجھے رسائی ہوئی، آپ سوچ نہیں سکتے وہ کتنی وہاں محنت کرتے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے۔ میں نے یہ اندازہ کیا ہے کہ جب ویکینڈ آتا ہے تو ہفتے بھر کی جو نیند ہے، جو ہفتے بھر میں نیند کی کمی رہ جاتی ہے، وہ ویکینڈ پر پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ وجہ، سبب، آپ نام لیں جنس کا، دنیا میں اجناس کیا کیا اللہ کریم نے عطا فرمائی ہیں، اس خطے زمین میں دیکھو کیا یہاں نہیں ہو سکتا۔ زیر زمین جو خزانے ہیں، دنیا میں جن کا نام ہے، وہ دیکھو کیا اس زمین کے سینے میں اللہ کریم نے عطا نہیں فرمائے۔ گرم پانی سے لے کر او بلند ترین چوٹیوں تک، فرق کیا ہے؟ اس ساری عطا کے بعد پھر کیوں مخلوق بھاگتی ہے؟ اس لیے کہ دین اسلام کے اصول مستحکم، دینن قیما، جو حصے دنیا کے حوالے سے بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں، دنیا کے جس خطے میں جس قوم نے جتنا اختیار کیا اتنا فائدہ حاصل کیا، تو اقوام عالم نے، ہم جہاں اظہار یا نعرہ کرتے ہیں کہ ریاست مدینہ، اقوام عالم نے اس کو بڑا تحقیقی انداز میں دیکھا، اور جو باتیں مذہب کے حوالے سے انہوں نے نہیں مانی، لیکن جو باتیں انہوں نے دنیا کے اصول کے حوالے سے مانی، وہ دنیا میں سب سے آگے جا رہے ہیں۔ تو ماننا جب، یہ اقرار جب عمل تک نہ گیا، تو ہم نے دونوں صورتوں میں کمزوری کی، ہم نے دونوں صورتوں میں، کہ اس ماننے میں اتنی کمزوری پیدا ہوئی کہ دین اور دنیا دونوں اصولوں میں ہم نے کمزوری کی۔ آپ دیکھ لیں کہاں کھڑے ہیں۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے لا شریک لا، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کیسے جانا، یہ رسائی کیسے حاصل کی، کہ اسے کیا پسند ہے؟ وحدانیت تک پہنچنا، یہ وہ حصہ ہے جہاں انسان پہنچ سکتا ہے کہ کوئی ایک ذات ہے جس نے سب کو پیدا فرمایا، اسے کسی نے پیدا نہیں فرمایا، یہ مجبوری ہے انسان کی، وگرنہ یہ بات ختم ہی نہیں ہوتی کہ اسے کس نے پیدا کیا، مزید کس نے پیدا کیا، مزید کون ضرورت پوری کر رہا ہے۔ مجبور ہے ایک ذات کا ماننا، وہ ذات کیسی ہے، اسے کیا پسند ہے، اسے کیا ناپسند ہے، اس تک پہنچنا یا اس کی رضا کو پانا کیسے اور کیوں کر ممکن ہے؟ یہاں یہ جو زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس کے بعد کیا ہے؟ ہر شے با مقصد ہے، اور جس کے گرد گھوم رہی ہے اس کی حیات بے مقصد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس شناسائی تک پہنچنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے در اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جب ہم کمزوری میں آئے، تو آپ دیکھو تو صحیح کہ اس جھگڑے تک ہم پہنچ گئے، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کر رہے ہیں، یہ توحید کا انکار کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں کیوں بات کر رہے ہو، ساری بات اللہ کی ہے۔ میاں، سارا یا کم کوئی بحث ہے نہیں، حقیقت ہے ہی وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس سے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، جتنا آگے پیچھے وہ اپنا حساب بنانا ہے، اور اتنی بھاری گٹھڑی اٹھانی ہے جو اٹھانی محال ہو جائے گی۔ تو دار دنیا امتحان گاہ ہے، فرصت ہے، قوت ہے، قوت گواہی ہے، وجودی حصے ہیں، दुनिया में हैसियत है, इसका इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन ये इम्तिहान है, तो ऐसी गठड़ी बनाए कि वहां उठाना महाल हो जाए। फिर जब बात हम करते हैं अल्लाह जल्ला शानहु की पसंद हो ना पसंद की, तो वहां पहुंचे कैसे। इसी तरह अगले दिन एक सवाल था, तो बड़ी अमूमी सी बातों में आते आते एक सवाल था कैफियत के हवाले से, तो मैंने उन्हें अर्ज किया कि कोई जो जिम्मेदार सिखा रहा है वो कैफियत का मालिक नहीं है, ये अल्लाह का करम और एहसान है कि उसने हक अता फरमाया, उस हक का इख्तियार फरमाया। वो जो असूल जाहिरी दिए जा रहे हैं जिन्हें मान रहे हो, उनका मानना ना खाने दिल तक नसीब हो, यही कैफियत है कि वो अमल की सूरत तक पहुंचे, ये उस कैफियत का हासिल है। तो इसी कैफियत को वापस लेते आओ तो ये बात कहां चलती जाएगी, ये बात दरबार रिसालत तक ले जाएगी, कलब अथर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ले जाएगी, और बात पहुंच जाएगी ला शरीक अल्लाह उसकी जात तक, अल्लाह रब्बुल आलमीन। लेकिन जब इस राह के मुसाफिर होगे, मालिक वो मखलूक ये, मानने जाओगे सीखने जाओगे, पगडंडी की जरूरत तो होगी, कमरे में दाखिल हो रहे हो तो दरवाजा तो दरकार होगा, मकसद तो कमरा है, दरवाजा तो मकसद नहीं, एक बेकार लक्कड़ है, लेकिन उसे अल्लाह ने जहां रखा है वो दरवाजे की सूरत बन गई। तो इसी तरह इस निस्बत के साथ जो जुड़ेगा उसे इसी असूल के तहत आना पड़ेगा, जब उस असूल के तहत आएगा तो फिर उस शख्स का मुयस्सर आना कि इससे उसे हसूल मुमकिन हो, फिर उसे समझ जाएगी कि मुझे कितनी हुब है, इतना वो तल्लक प्यारा होता चला जाएगा। तो बात अफराद की नहीं, बात अल्लाह रब्बुल आलमीन। इसी को जब आप बहुत बड़ी बात पर जाकर देखेंगे, क्योंकि मुकाबल तो ये बात है ही नहीं, ये तो तहत भी नहीं, इसकी तो हैसियत को नहीं, हम कौन और हमारी हैसियत का। लेकिन जब बात जाएगी अल्लाह जल्ला शानहु की तरफ तो फिर वो असूल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए फिर वो दरकार हो, और जब वहां बात आएगी तो वहां के असूल फिर अल्लाह ने अता फरमाए। मुखातिब करने की नहीं जरूरत, आप तशरीफ लाएं तो मुनासिब यही है कि आप मुतवज्जे हों, वगरना बढ़कर सवाल करने की बात नहीं। शनासाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से, और वहां के असूल वो जो रब्बे कायनात ने खुद मुकर्रर फरमाए, और हम कहां पहुंचे कि इन्हीं असूलों पर बहस करते करते मैं आपको गलत साबित कर रहा हूं, आप मुझे गलत साबित कर रहे हैं। तो वो जगह वो मकाम है जहां से तामीर है, तकरीब तो है नहीं। तो क्या मुआशरे में जितनी हम गुफ्तगू सुन रहे हैं उसमें तामीर ही हो रही है? जरूरी है ये जो ऐलान फरमाया जा रहा है ना, वहदानियत बारी ताला, जब मानोगे अपने अल्लाह को तो उसकी जात अलीम नहीं है, सिफात के साथ मानना है, कुल्ली मानों में मानना है, तो फिर जो मैं सोच रहा हूं क्या मेरा अल्लाह नहीं जानता कि मैं क्या सोच रहा हूं? क्या मैं नहीं जानता कि उसकी तहरीर हो रही है, फरिश्ते शहादत लिख रहे हैं, उसकी जात अकदस खुद शाहिद है, उसके हजूर पेश होऊंगा, जवाब देना होगा, बात कैसे बदल जाएगी? मैं थड़क जाएगा बंदा, लर्ज जाएगा। तो ये जो मानना है, अल्लाह करीम तौफीक दे, अल्लाह अल्लाह की जिक्र की मेहनत की तौफीक दे, कमी बेशी माफ़ फरमाए, शर्फ़े कबूलियत नसीब हो, तकड़े होकर अपनी अल्लाह अल्लाह करें। अल्लाह अल्लाह का मानना हम जैसे कमज़ोरों को सुधार देगा, इस्तकामत देगा, हिफाजत नसीब होगी, एक कतरा कहीं टपकता देखो तो चट्टान के सीने में देखना वो सुराख कर देगा। पानी का कतरा जहाँ टपकता रहे ना, वहाँ निशान पड़ जाता है। आहिस्ता आहिस्ता अगर वक़्त गुजरे तो वहाँ वो काटना शुरू कर देता है चट्टान के सीने। कौन? पानी का कतरा। इसमें आज़म है अल्लाह। इसकी तकरार क्या कुछ नसीब होने का सबब होगी? हमारे हिसाब ख़त्म हो जाएंगे, पैमाने ख़त्म हो जाएंगे। तो वो जो मानना है उस मानने तक के इखलास को, ये हर दो तरफ फायदा देगी। जैसे हम लताइफ करते हैं ना, अब जहां कोई लतीफे कलब कर रहा है तो लतीफे कलब अज खुद उसके अंदर तकवीयत नसीब हो रही है, लेकिन वो साथ इस काबिल कर रहा है कि लतीफे रूह के लिए बंदा इस्तेदाद हासिल कर रहा है। इसी तरह जब दूसरे लतीफे पर मेहनत कर रहा होता है तो तीसरे लतीफे की इस्तेदाद तो मुयस्सर आ रही होती है, वापस पहला लतीफा जो है उसमें और मजबूती पैदा हो रही होती है। जब यह मानना इस इब्तिदा तक ले आएगा कि अल्लाह 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 नसीब होगी, तो ये जो विर्द है, ये जो जिक्र है, इसमें जात है, जहां ये अमली जिंदगी तक तकवीयत का सबब होगा, वहां वापस जो मानना है, जो इब्तिदा है, उसमें भी तरक्की का सबब होगा। अब इन्हिसार है कि इस मानने में मकसद क्या है इब्तदा से। अच्छा, क्या अल्लाह करीम नहीं जानते थे कि ये शैतान मर्दूद ठहरेगा, इनकार करेगा, तकब्बुर करेगा? क्या अल्लाह करीम नहीं जानते थे? तो था नहीं, उसे पैदा फरमाया उस वक्त उसका हाल जानते थे कि ये अपना जो इख्तियार है उसका इस्तेमाल कहां करेगा और कैसा करेगा। जब तक वो जाहिर नहीं हुआ तब तक उस पर हुक्म नाफिज नहीं हुआ। जब उसने अपना आप जाहिर किया उस पर हुक्म नाफिज हुआ। तो ये जो अल्लाह की याद है, ये ऐसी कमजोरियों से कि जो इब्तिदा में हमने इख्तियार किए हैं वहां तक की सफाई का सबब बनता है, लेकिन दुनिया इम्तिहान का याद रखी। बहालत ईमान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होना दर्जे सहाबियत पर पहुंचाता है। उलमा बहस करते हैं कि कोई नाबीना है तो क्या सूरत है, जिन्हें ज्यारत नसीब हुई उनका तो दर्जे सहाबियत पर बात आ रही, तो जो नाबीना है उनके हवाले से तो उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नज़र मुबारक नसीब हो, जो दुनिया में जलवा अफरोज होना है आपका, वो जो कुर्ब नसीब हुआ वो कहाँ पहुँचे? वो बुलंद तरीन ईमान का मकाम बाद अज़म्बिया सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह। वजूद का जर्रा जर्रा तो कुजा, जिस शय को वो वजूद मुबारक मस कर गए उस शय तक जो है ज़िक्रुल्लाह की कैफियत चलती गई। क्या वहां बदबख्त तरीन तबका नहीं मिलता, जिन्हें कुरान करीम फरमाता है ये अंधे हैं? कैसी बदबख्ती कि जमाने मुबारक भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं, मुखातिब फरमा रहे हैं, दावत इरशाद फरमा रहे हैं और बड़े प्यार प्यार से पुकार रहे हैं, सख्तियों के मुकाबल नरम लहजे में दावत दे रहे हैं। इनकार पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना दुख कर रहे हैं कि कुरान करीम फरमाते हैं कि मेरे भी बस कर है, इस दुख के साथ क्या आप अपना इख्तिताम ही कर दें? किस कैफियत के साथ मौत तक ही बंदा पहुंच जाए उस दर्द में कि ये अपना अंजाम किस तरफ कर चुन रहे हैं इस मोहब्बत। तो क्या वहां जो है लोग मुनाफिक नहीं हुए? इनकार वाले नहीं हुए, मुकाबले नहीं हुए। आज जब हम अपने आप को देखेंगे तो क्या आज नियत की जरूरत नहीं है? हम किस नजर से बैठे हैं, हम किस ख्याल से सुन रहे हैं, हमारा आने का मकसद क्या, आज जरूरत नहीं हो? बड़ी बुनियाद है। हमेशा अपनी नीयत को देखना है और उसे टटोलते रहना है, क्योंकि नीयत का जो फतूर है वो पूरी इमारत को ऐसे गिरा देगा जैसे बुनियाद टूटती है। तो जब अल्लाह अल्लाह की जा रही है, मुराकबा तो मनाजिल की तरबियत दी जा रही है, तो तरफैन हासिल करने वाला और सिखाने वाला क्या इब्तिला से बाहर चले गए? इम्तिहान गाह में है मियां, जरूरी है कि वो अपने अपने हालात का ख्याल रखे। वबिज़ालिक उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, ये बात यौम अलस्त की हो तो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ईमान वाले, पहले मानने वाले। बेशक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो वही इलाही नाज़िल हुई तो भी पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानने वाले। आप पहले मानने वाले और आप ऐसे रहनुमा कि आप शायद होंगे अंबिया रसूल पर, जहां मखलूक खुदा पर शहादत होगी वहां आपकी शहादत अंबिया रसूल पर भी होगी। तो फिर जब इस मानने को देखोगे तो बहसियत मुसलमान व बिज़ालिक उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, इसी तहत जब बहसियत उम्मती मानोगे तो फिर हर हिस्से का मानना होगा। इस मानने फिर पसंद हो ना पसंद की फिर बात नहीं आएगी। अल्लाह करीम हमेशा अपनी हिफाजत अता फरमाए और इस मानने की वो हकीकत नसीब हो कि आज का अमल आज ही अपना अंजाम दिखा रहा हो ताकि अमल बद से हम दूर हो सके। और ये जो शोबे तसव्वुफ है, ये जितना नसीब होता है उतनी ज़ात की नफी होती है। हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि अपने मनाजिल देखने तो अपने आमाल देख लो। तो ये जो कैफियत या कैफियात का हसूल है ये ज़ात की नफी करता चला जाता है। और अगर इस राह में फरीगैन सीखना या सिखाना दोनों पहलुओं में नीयत की कहीं खलश आएगी तो जितनी खलश होगी उतना नुकसान होता चला जाएगा। अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैंने देखा सुना समझाया या जहाँ तक मुझे दस्तरस नसीब, फतूर लेके मैंने सिरे चढ़ता बंदा को नहीं देखा, मैंने नहीं देखा कि फतूर भी रखे, बदनीति भी रखे और फिर वो कहे कि मैं पार चढ़ जाऊंगा। मैंने मुझे समझ नहीं आई और मुझे कोई दावा नहीं है कि मैं ये कहूं कि जो मुझे नज़र आ रहा है ये किसी को नज़र नहीं आता। मुझे कोई दावा नहीं है कि जितना मैं जानता हूं उतना कोई नहीं जानता। मुझे तो बड़ी सादा सी बात है कि इस मुकाबले या इस सोच की दौड़ में मैं तो हूं ही नहीं। अल्लाह करीम का एहसान कि उसने मशाइख़ अज़ाम की जूतरियों में बैठने की तौफीक दी। यही असनाद है हमारे पास, यही सारा कुछ मनाज़िल हैं और यही सारा वो सामान है जिसे लेकर दुनिया की ज़िंदगी बसर कर रहे। और अल्लाह का एहसान है और किसी की किसी सनद की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये मैंने देखा, तजर्बे में आया, क्योंकि जहाँ आप ज़िंदगी बसर करते हैं आप तशरीफ़ लाते हैं मखसूस औकात में। यहाँ जो रहने वाला है वो शब और रोज़ यहाँ गुजार रहा है, आने जाने वालों को भी देख रहा होता है और जो मुस्तकिल